जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन व्रज जन रंजन
सारी लाइट काम करा
जमुना तीरावन जमुना तीरावन चारी राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरावन चारी यमुना जमुना तीरावन चारी राधा माधव हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तरिषद शिष्य मदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बेबीडी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तरिषद शिष्य मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पदीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। इसको सो स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं राम लक्ष्मण प्रभु। ओके सो आप सब घरों में बैठे हुए अपने अपने घरों में भगवान की कथा सुन रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी की कृपा है कि पहले जो कथा केवल नैमिषारण्य में बैठे ऋषि सुन सकते थे, आचार्यों की कृपा से मंदिरों तक पहुंच गई और आज कोरोना की कृपा से घरों घर में पहुंच रही है। तो ये जो सब समय है राम लक्ष्मण प्रभु, आवाज ठीक आ रही है? अब हाथ ऊपर कर दीजिए तो मैं पता चल जाएगा कि आवाज ठीक आ रही है। ओके ठीक है, जिनका वीडियो ऑन है सभी भक्त हाथ ऊपर कर दीजिए तो हमें समझ में आ जाएगा। थैंक यू। ठीक है यस समझ में आ गए। तो अभी का ये जो समय चल रहा है जिसमें सभी को घर में बंदी बना दिया गया है, रहना पड़ रहा है अंदर, दिखने में स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि हमें वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। जो हमें बुरी चीज मिली है उसका सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है? तो देखिए बुरी चीज का ये सबसे अच्छा उपयोग है, राम लक्ष्मण प्रभु पिछले 3 साल से हमें कह रहे हैं, ज्यादा ही हो गया शायद, कि हम वहां आए और संडे की क्लास दें, लेकिन हो नहीं पा रहा था। मगर अब देखिए कितनी आसानी से आप सबको ये क्लास मिल रही है। तो इसीलिए जहाँ बुरी चीज़ें होती हैं वहाँ पर निश्चित अच्छाई भी होती है। तो ये जो अवस्था इस समय है, सारा जगत भयभीत है, तो ये हमें क्या सिखला रहा है, हम इससे क्या सीख सकते हैं, हम इससे बहुत सी शिक्षाएं ले सकते हैं। ये जो पूरा इस समय का वातावरण है इससे बहुत शिक्षाएं ले सकते हैं। क्या वातावरण है इस समय? हर एक के मन में भय है, किसी के पास इस समय इसको रोकने की शक्ति नहीं है। बड़े बड़े देश अमेरिका जैसे घुटने टेक रहे हैं इसके सामने, कोई इलाज नहीं है। हमारी मेडिकल विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, आप में से तो कुछ लोग डॉक्टर्स भी हैं, राम लक्ष्मण प्रभु स्वयं एक डॉक्टर हैं, तो मेडिकल विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, लेकिन आज सब हाथ ऊपर करके बैठे हैं। हाँ प्रयास बहुत हो रहा है, हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए हमारी सरकार को कि उन्होंने सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ये बात ये चीज फैले नहीं, फिर भी दुनिया में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इस स्थिति से क्या सीखा जा सकता है? पहली चीज हम इस स्थिति से सीखते हैं कि हमें जीवन शैली बदलने की आवश्यकता है। हमारी जो जीवन शैली इस समय है, अगर हम उसी जीवन शैली पर चलेंगे तो आज जो हुआ है उससे कहीं अधिक आने वाला है। ये तो एक छोटी सी चेतावनी दी है प्रकृति ने कि अगर आपने जीवन शैली नहीं बदली तो क्या क्या आने वाला है। कैसी जीवन शैली है आज के लोगों की? जीवन शैली हमने बना ली थी कि हमें जो इच्छा हो हम वो करेंगे, हम किसी नियम में नहीं रहेंगे, हमें जो खाना है हम वो खाएंगे, हमें जो करना है हम वो करेंगे, और हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों? हम अपने ही मालिक हैं। तो आज ये स्थिति ने दिखला दिया आप अपने मालिक नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो भी खाएं जो भी करें, चाहे मांस खाएं कॉकरोच खाएं, पता नहीं और क्या क्या खाते हैं लोग वहां पर, हाँ चमगादड़, हाँ चमगादड़, ओके चमगादड़ खाएं तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रकृति के नियमों को जहां भी तोड़ा जाएगा उत्पात होगा ही। तो इसीलिए पहली शिक्षा यहां हमें मिलती है कि हमें अपनी जीवन शैली बदलनी है। जिस दिन जीवन बदल लेंगे अपना, जो प्रकृति का विपरीत प्रभाव हमारे ऊपर है वो समाप्त हो जाएगा। प्रकृति का प्रभाव बना रहेगा लेकिन विपरीत प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहले जीवन शैली को बदलना है। इन स्थितियों से हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है कि हाय हाय क्या होगा, इतने लोग मर रहे हैं, कहीं मैं भी मर जाऊंगा, अंदर छुप कर बैठ जाऊं, लॉक लगा कर बैठ जाऊं। नहीं, ठीक है अंदर बैठना है क्योंकि दूर रहने से ही ये कम होगा, लेकिन भय से नहीं बैठना है। कभी कभी भक्तों के मन में आता है कि हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित हैं, हमें क्या जरूरत है ये डरने की, हमें क्या जरूरत है घर में बैठने की, हम आराम से जाएंगे सबके पास, ऐसे भी बीमारी होनी है तो वैसे भी हो जाएगी, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि हाँ भगवान सब कर सकते हैं लेकिन एक भक्त को बुद्धिमान होना चाहिए। तो हमें ऐसे नहीं करना है कि हम ट्रेन के सामने जाकर खड़े हो जाएं और कहें कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो इसीलिए हमें ये करना है कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ जीवन शैली बदलिए, बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं भक्ति करना ये उन लोगों का काम है, ये जो नियम पालन करना उन लोगों का काम है जिनके जीवन में कष्ट है, जो दुखी हैं, जिनको कुछ सुख चाहिए, वे लोग भक्ति करें, वे नियम का पालन करें। हमारे जीवन में सब कुछ है, खाना पीना मजा करना, हमें कुछ आवश्यकता नहीं है। आज पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आवश्यकता है। वे लोग जो कहते थे कि हमें आवश्यकता नहीं है, आज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। आप जानते हैं एक देश के प्रधानमंत्री ने रोते हुए प्रार्थना की कि भगवान ही अभी रक्षा कर सकते हैं। तो वे लोग जो भगवान को नहीं मानते थे आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वे लोग जो ये कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है भक्ति करने के लिए, मंदिर आने के लिए, यात्रा में जाने के लिए, राम लक्ष्मण प्रभु बुलाते रहते हैं, आप लोग कहते हैं समय नहीं है। तो वे लोग जो कहते थे कि हमारे पास भक्ति करने का समय नहीं है, भगवान ने इतना समय दिया अब आपको, अब कोई बहाना मत बनाइए। इतने समय की कामना किसी ने नहीं की होगी। इतिहास में पहली बार है कि पूरा देश लॉकडाउन हो गया, पूरा देश ही नहीं दुनिया के कई देश, अब बैठो घर में और भक्ति करो। तो इसीलिए जीवन शैली को बदलना है। हम ये नहीं सोच सकते कि हम जैसे चल रहे हैं चलेंगे तो और बड़ी विपदा आएगी। आज ही संभल जाइए, भगवान ने भी छोटी सी चेतावनी दी है। तो क्या जीवन शैली है हमारी? जैसे हम समझा रहे थे, हम जो भी खाएं ऐसा नहीं है, जीवन शैली होनी चाहिए शास्त्र के आधार पर, क्योंकि मनुष्य जीवन बना ही इसीलिए है कि वो नियम का पालन करे। अन्य किसी भी जीवन में नियम पालन करने की या करने के लिए किसी को प्रतिबद्ध नहीं किया जाता, जबरदस्ती नहीं की जाती किसी के साथ नियम पालन करने के लिए, ये सत्य है। अन्य जितनी भी योनियां हैं, चाहे पशु योनि हो, पक्षी योनि हो, कोई भी योनि हो, वहां किसी को बाध्य नहीं किया जाता नियम पालन करने के लिए। केवल मनुष्य जन्म में, मनुष्य योनि में बाध्य किया जाता है, जबरदस्ती की जाती है नियम के लिए। क्यों? क्योंकि अन्य पशु, अन्य योनियां अपने नियमों का वैसे ही पालन करते हैं, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं उनको शास्त्र पढ़ाने की। वो वही कार्य कर रहे हैं जो प्रकृति ने, भगवान ने उनके लिए नियत किया है। केवल मनुष्य है जो अपने नियत कर्मों को नहीं करता, अपने कामों को नहीं करता, और इसीलिए कष्ट आते, और इसीलिए जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है कि शास्त्र का पालन कीजिए। तो पहली चीज हम सीखते हैं इस बुरी अवस्था से कि हमें जीवन शैली बदलनी है, एक ऐसा जीवन जिसके आधार भगवान हो, श्री कृष्ण हो, ऐसा जीवन जो हमें एक शक्ति प्रदान करे, आत्मबल प्रदान करे, एक ऐसा जीवन जिसको जीकर जीवन के अंत में हमें ये नहीं कहना पड़े कि गलती हो गई। एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत धनवान व्यक्ति, जीवन भर धन कमाया, इतना धन कमाया, कभी अपने परिवार वालों का ध्यान नहीं किया, कभी संबंधियों का ध्यान नहीं किया, बस धन 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 धन, परिवार वालों ने छोड़ दिया, संबंधियों ने छोड़ दिया। जब मृत्यु हो रही थी, अंतिम क्षण में थे, उनके अंतिम वाक्य ये थे, गलती हो गई। तो हमारी जीवन शैली ये ना हो कि जीवन के अंत में हमारे भी मुख से निकले गलती हो गई। हमारी जीवन शैली ऐसी हो कि मृत्यु के समय भी हमारे मुख से निकले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए जीवन शैली शास्त्र के आधार पर हो, भगवान आधार हो, केंद्र हो हमारे जीवन का। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति धन नहीं कमाए, व्यक्ति व्यापार नहीं करे, कहीं बाहर घूमने नहीं जाए। नहीं, जितना ज्यादा भक्त घूमने जाते हैं उतना तो बाहर वाले नहीं जाते होंगे। राम लक्ष्मण प्रभु उदाहरण है, साल में कितनी बार यात्रा जाते हैं हमें नहीं पता, जहां जहां भी हम जाते हैं वहां मिल जाते हैं प्रभु जी हमें, तो ये हमसे ज्यादा तो ये घूमते हैं। तो इसीलिए भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ बंद कर रहे हैं, हमें कोई अच्छा खाना नहीं खाना, हमें अच्छे कपड़े नहीं पहनने, हमें कहीं बाहर घूमने नहीं जाना। जीवन शैली बदलने का अर्थ है ये सब करते हुए कृष्ण को केंद्र में रखना, बस। इतनी छोटी सी चीज समझाने के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था भगवान ने की है, भगवान करते हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि भगवान ने व्यवस्था नहीं की, पूरा गोवर्धन लीला भगवान ने की, इतनी बड़ी गोवर्धन लीला, कितना कष्ट हुआ ब्रजवासियों को, ऊपर से पर खंबे के समान पानी की बूंदें गिर रही हैं, सारा जलमग्न हो गया, भाग रहे हैं, बच्चे डूब रहे हैं, गायें डूब रही हैं, सब बचा रहे हैं एक दूसरे को। इतना कष्ट, इतनी बड़ी लीला की भगवान ने केवल एक भक्त का उद्धार करने के लिए, और वो थे इंद्र, उनको सबक सिखाने के लिए। और इसीलिए ये इस समय की ये भगवान की कोरोना नहीं करुणा लीला है जो भगवान ने की है, केवल ये सिखलाने के लिए कि अब भी समय है, जीवन शैली बदलो, ताकि जीवन के अंत में ये नहीं कहो कि गलती हो गई। और फिर उस समय कोई लाभ नहीं है, हमारा धन कुछ काम नहीं आएगा। तो पहली चीज इससे हम ये सीखते हैं कि हमें जीवन शैली बदलनी है। दूसरी चीज, बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये हमें सिखलाती है ये व्यवस्था, ये इस समय की अवस्था, कि हम बेबस हैं, हम पूर्ण शक्तिमान नहीं हैं। जो देश अपने आप को बहुत शक्तिमान कहते थे कि हमारे से ज्यादा दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है, एक भगवान ने इतनी सी वायरस भेजी, वो भी इतनी है कि ये जो हम दिखा रहे हैं तो बहुत बड़ा लग रहा है, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है। भगवान ने इतना सा भेजा, इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां अमेरिका, लंदन, ये सब घुटने टेकती है ये दिखलाने के लिए कि हम दरअसल महाशक्तिमान नहीं है, पूर्ण शक्तिमान नहीं है, हम बेबस हैं प्रकृति के सामने। और इस बेबसता को समझिए, कोई व्यक्ति बेबस नहीं होना चाहता। जिसके पास धन है, जिसके पास थोड़ी सी शक्ति है, जिसके पास थोड़ा सा प्रभाव है, वो सोचता है मैं कभी बेबस नहीं हूं जीवन में और मेरे जीवन में कभी ऐसी व्यवस्था नहीं आएगी। तो सोचिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाने वाला इस जगत में बेबस है आज। क्या नहीं है उनके पास? धन है, सारी सुविधाएं हैं, सारी एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी है, बेबस है। तो ये दूसरी चीज इस अवस्था में हमें सिखाई जा रही है कि हम बेबस हैं, कोई हमारा शक्ति नहीं है प्रकृति के सामने, भगवान के सामने। तो जब अपने आप को बेबस मानता है व्यक्ति, तो क्या करता है? एक ही कार्य करता है, समर्पण। जब तक हम सोचते हैं कि हमारे अंदर शक्ति, हम कुछ कर सकते हैं, तब तक हम समर्पण नहीं करते। लेकिन जिस दिन व्यक्ति जान लेता है कि हाँ, आज मेरी शक्ति नहीं, आज मैंने मान लिया कि कोई बड़ी शक्ति है, कोई महान व्यक्ति है जो हम सबको नियंत्रित कर रहा है, समर्पण करो उसको। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हम यहां सीखते हैं कि हमारी कोई शक्ति नहीं है, बेबस हैं हम। और तीसरी चीज हमने सीखा इससे कि जीवन शैली बदलनी है। हमने सीखा हम बेबस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां इस भयावह स्थिति में और हम लोग क्या सीख सकते हैं? अपनी बेबसी के अलावा हम ये सीख सकते हैं कि हाँ, ये सही है कि हम बेबस हैं। तो क्या कोई मार्ग है, क्या करना चाहिए व्यक्ति को? समर्पण की भावना। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं कि न केवल हमें अपनी बेबसता को स्वीकार करने की आवश्यकता है, भगवान की परम सत्ता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हंगामा हुआ था, बहुत बाढ़ आई थी, कितने लोग मरे आज तक नहीं पता। बेबस थे वो लोग, और वहां भगवान ने अपनी शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन किया था, और यहां भी यही है। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज कि हम समर्पण करें इस शक्ति के सामने, वो शक्ति जो भगवान श्री कृष्ण की है, उसको समर्पण करें। और समर्पण की प्रक्रिया क्या है? क्या समर्पण मतलब हार जाना? जहां तक लोग जानते हैं समर्पण का अर्थ, वो सोचते हैं हार जाना, लेकिन समर्पण का अर्थ हार जाना नहीं है। सच्चा समर्पण विजयी कराता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है भीष्मदेव। भीष्मदेव, इन्होंने अपने जीवन के अंत में कृष्ण को समर्पण किया और जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया। ऐसा जीवन उनका था और ऐसी मृत्यु उनकी थी कि हम सब के लिए अनुसरणीय है। ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसी मृत्यु होनी चाहिए जो भीष्मदेव की थी। तो इसीलिए समर्पण की आवश्यकता को हम लोग देखते हैं इस समय पर। साथ ही साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हम इससे सीखते हैं, और वो क्या है? वो महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं कि यहां सारी दुनिया, आज देखिए आतंकवाद समाप्त हो गया, कहीं से कोई आतंकवाद की सूचना नहीं आ रही है कि यहां पर, एक आध बीच में छोटे मोटे हुए हैं, लेकिन अधिकतर सब बंद हो गए हैं। आज अन्य कोई अपराधों की सूचना नहीं आ रही है। कारण यह है कि सारी दुनिया एक शत्रु के विरुद्ध लड़ रही है। सारी दुनिया का अब एक ही शत्रु है, कोरोना। तो इसीलिए सब उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात ये सिखलाई जा रही है कि यही हमें करना है, हमें आपस के मतभेद भूलकर, आपस में लड़ाई करना छोड़कर हमारे कॉमन एनिमी माया देवी के विरुद्ध युद्ध लड़ना है। अगर सारा जगत एक हो जाए और वो ये जान ले कि हमारा शत्रु हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, हमारा शत्रु कोई देश नहीं है, हमारा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा शत्रु कोई महान शक्ति नहीं है, हमारा शत्रु वो है जिसको हमने भगवान की शक्ति है लेकिन हमने उसको स्वीकार कर लिया है भगवान मानकर, जिसके अधीन हम हो गए हैं, और वो है माया, मोह में डालने वाली माया। और इस शत्रु को अगर हम स्वीकार करें, अगर हम ये मान लें कि ये हमारा शत्रु है और सब मिलकर लड़ें, तो बहुत जल्दी पूरी पृथ्वी पर राम राज्य स्थापित हो सकता है। लेकिन हम लड़ रहे हैं आपस में, तो ये यहां दिखला रहे हैं कि जिस तरह आज सारा देश, सारा जगत, वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ये आ रहा है, कैसे होगा, बचे कैसे। हमने कुछ समय पहले सुना था कि चाइना में ही, ये चाइना वाले बहुत कुछ करते रहते हैं, तो हमने सुना था कि चाइना से एक व्यक्ति ने एक नॉवेल लिखा है, सीरीज लिखी है नॉवेल की, 3-4 नॉवेल उन्होंने लिखी हैं, और उसमें उन्होंने एक कल्पना की, फिक्शन नॉवेल है, तो उन्होंने लिखा कि ऐसा हुआ कि अचानक पृथ्वी के लोगों को पता चला कि आज से 100 साल बाद या 150 साल बाद बाहर से, अंतरिक्ष से कोई एक चीज जो फेंक दी गई है अंतरिक्ष के लोगों ने, अटैक कर दिया है पृथ्वी पर, और वो आने के लिए 150 साल लगेंगे। तो हमारे पास 150 साल है सब तैयारी करने के लिए कि कैसे उससे बचा जाए, अगर नहीं करेंगे तो सारी पृथ्वी जलकर नाश हो जाएगी। तो बताते कैसे सारे देश एक साथ आने लगे, कैसे सब में मित्रता हो गई। तो वो उनकी कल्पना थी, लेकिन आज हम लोग उसको देख रहे हैं कि कैसे सारे देश एक साथ आ रहे हैं, सब चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े देश, ओके क्या करना है, आप क्या कर रहे हो, हम क्या करें, ठीक है हम भी यही करेंगे, आपके देश में ये हो रहा है, अच्छा आपके देश में इतना बर्बाद हो गए, अब हम थोड़ा संभाल कर रहेंगे, अच्छा आप हमारे पास से ये ले लीजिए, सब मिल रहे हैं। तो कोरोना ने एक अच्छी चीज की है, सबको एकता का भाव ला दिया। हमें पता है इसके जाने के बाद फिर से वही होगा, पुनः मूषिक भव। श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे कि एक बार एक चूहा था, तो वो चूहा एक साधु के पास आया कि मुझे बहुत कष्ट है, बिल्ली बहुत कष्ट देती है, मुझे बिल्ली बना दीजिए। साधु ने कहा ठीक है, तथास्तु। फिर थोड़ी देर बाद आया कि नहीं बिल्ली तो ठीक, मुझे कुत्ता बहुत कष्ट देता है, तो ठीक है तथास्तु तुम कुत्ता बन जाओ। फिर आया, नहीं मुझे शेर खा रहा है, डर रहा है, शेर डरा रहा है, तो मुझे शेर बना दीजिए। साधु ने कहा ठीक है शेर बन जाओ। शेर बना दिया, तो शेर बन गया और साधु को देखकर एक गुर्राने लगा। तो साधु ने पूछा अरे क्या हुआ, तो बोला अब शेर हूं, मुझे खाना है तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। साधु ने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा पुनः मूषिका भव, फिर से चूहे बन जाओ। तो इसी तरह यही होने वाला है, आज सब एक है, सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये जाएगा 6 महीने 8 महीने साल 2 साल, पुनः मूषिका भव, ये माया है, इतना प्रभाव हो जाएगा। फिर यही लोग लड़ेंगे आपस में कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे नहीं छोड़ना, जो भी। तो ये हमें इससे सीखना है कि अगर हम अपने जो हमारे शत्रु है उसके प्रति एक हो जाएं, तो हम कितनी आसानी से इस जगत में ऐसा साम्राज्य ला सकते हैं जिसका आधार प्रेम हो, ऐसा साम्राज्य ला सकते हैं जहां एक दूसरे के सहयोग की भावना हो, ऐसा साम्राज्य ला सकते हैं जहां कोई एक दूसरे को मारे नहीं बल्कि एक दूसरे के प्राण बचाए, जैसे आज सब कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है हमें ऐसे कार्यों को करने की। तो ये हमें कोरोना सिखला रहा है कि हमें भक्ति करने की आवश्यकता है, भगवान को केंद्र में लाने की आवश्यकता है। अपने ऊपर जो भी हमें विश्वास था, अब वही विश्वास भगवान पर दिखलाने की आवश्यकता है, जीवन सफल हो जाएगा। आज आपका जीवन क्या हुआ है, झांकिए अपने अपने हृदय में और हमें बताइए कि क्या आपको विश्वास है कि आपने जो जीवन जिया या जो जीवन आप जी रहे हैं वो सही जीवन है, वो यही जीवन है जिसके लिए आपने कामना की थी, वो यही जीवन है जो आपको सुख दे रहा है। बिल्कुल नहीं। हो सकता है आपने इस जीवन की कामना की हो लेकिन यही जीवन आपको सुख नहीं दे रहा। इसीलिए भगवान केंद्रित जीवन को स्वीकार कीजिए। भीष्म देव का वर्णन हम कर रहे थे। भीष्म देव अपने उदाहरण से बहुत सी चीजें सिखलाते हैं, तो अगर आप सबकी अनुमति हो तो थोड़ा बहुत, वैसे समय तो केवल कम बचा है, लेकिन अगर आप सबकी अनुमति हो तो थोड़ा सा कहना चाहेंगे। राम लक्ष्मण प्रभु कुछ कह सकते हैं? आप खाली हाथ उठा दीजिए तो हमें पता चल जाएगा। यस, थैंक यू। वैसे अगर राम लक्ष्मण प्रभु आप मना भी करते तो भी हम कहने ही वाले थे। सो भीष्म देव का बहुत सुंदर वर्णन है, और विशेष करके जब उनकी मृत्यु होती है, उनका तो जीवन ही पूरा अनुसरणीय है, उनका जीवन शिक्षाओं से भरा हुआ है, लेकिन केवल हम उनके उस समय का वर्णन करेंगे जब भीष्म देव अपना देह त्यागने वाले हैं। ये वो दिन था, कहना चाहिए नौवां दिन था। नौ दिन का युद्ध हो चुका था, भीष्म देव बड़ा भयंकर युद्ध कर रहे थे, और दसवां दिन अगले दिन जब भीष्म को देह त्यागना था, तो उस दिन रात्रि को नींद नहीं आ रही थी भीष्म देव को। वो सोच रहे थे कि ये शांतनु महाराज ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, दरअसल ये आशीर्वाद था या श्राप था, इच्छा मृत्यु का वरदान। मैंने क्या क्या नहीं देखा अपने इस जीवन में, बच्चों ने क्या क्या नहीं किया उनके सामने, आपस में लड़े मरे, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, क्या क्या नहीं हुआ। तो भीष्म उन सारी चीजों को स्मरण करके क्षमा याचना करने लगे कि ये सब मेरे कारण हुआ, क्षमा मांगने लग गए और इच्छा मृत्यु के वरदान के बारे में सोचने लगे। उधर पांडवों के जो कैंप थे वहां पर ये निश्चित था कि अब कल भीष्म को मारना है, क्योंकि ये लोग जाकर भीष्म से मिलकर आ चुके थे। भीष्म ने खुद बताया था कि अंबा को लाना सामने, अंबा मतलब जो इस समय शिखंडी के रूप में है, तो मैं तीर नहीं चलाऊंगा उसके ऊपर। ये बड़ी विस्तार की कथा है, आज ज्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं, किसी दिन और महाभारत पर चर्चा करेंगे, या फिर कभी औरंगाबाद आएंगे तो 4-5-6 दिन केवल महाभारत पर चर्चा करेंगे। राम लक्ष्मण प्रभु बोल रहे, प्रभु जी बिल्कुल मत आइएगा, अभी कोरोना फैला हुआ है, अभी नहीं आ रहे हैं, बाद में आएंगे। प्रभु आपका माइक स्विच ऑफ है इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है, बाद में लिख कर भेज दीजिएगा। तो भीष्म देव का अंतिम समय है, ये बहुत शिक्षाप्रद है। तो अब अगले दिन भीष्म को मारना है। एक दिन पहले अर्जुन कृष्ण से कहते हैं रात्रि को, वो अर्जुन जो भगवत गीता सुन चुका है, वो अर्जुन जिसने कह दिया यत कि जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तव, वो अर्जुन पूछता है कि क्या भीष्म को क्षमा नहीं किया जा सकता? मैं जानता हूं भीष्म ने गलत किया, लेकिन मारना क्यों उनको? और फिर अर्जुन कहता है कि मुझे बड़ा प्रेम था, प्रेम है, जब मैं छोटा सा बच्चा था हस्तिनापुर में आया, मुझे पता नहीं था कि मेरे पिता कौन है, मैंने देखा नहीं था, मैं कई वर्षों तक सोचता था कि भीष्म मेरे पिता हैं, क्योंकि इतना प्रेम करते थे मुझसे। मैं खेल कर आता था, मेरे पांव गंदे होते थे और भीष्म देव हमेशा साफ सुथरे स्वच्छ सफेद कपड़े पहना करते थे, और उनके सारे कपड़े गंदे हो जाते थे मैं उनकी गोद में जब बैठता था, लेकिन भीष्म कभी कुछ नहीं कहते थे, बहुत प्रेम करते थे मुझे। और काफी समय के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे पिता के भी पिता हूं। तो उस समय बहुत, तो अर्जुन बोलने लगे, तो उस समय कृष्ण ने डांटा अर्जुन को, शायद कृष्ण कह रहे होंगे और एक बार सुनाओ भगवत गीता, भूल गए लगता। तो कृष्ण ने कहा कि तुम इतना प्रेम कर रहे हो, इतना दिखला रहे हो, वही भीष्म जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था वो वहां क्यों बैठे थे, उठकर क्यों नहीं चले गए, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध करने के लिए कम से कम वहां से उठकर जा सकते थे, वो उठकर भी नहीं गए। क्या तुम लोगों को मिलने के लिए आए थे वन में? एक बार भी नहीं आए मिलने के लिए। तो ना तो वो वहां से उठकर गए, ना आप लोगों को मिलने के लिए वहां पर आए हैं। और जब मैं गया था शांति दूत बनकर, तो मैंने विदुर के घर प्रसाद लिया, क्यों भीष्म के घर नहीं लिया? इसी कारण से, मैं चाहता तो भीष्म के घर ले सकता था। तो इसीलिए उन्होंने समझाया कि अब उनको मारना ही होगा। तो खैर, अगले दिन युद्ध शुरू होना है। भीष्म इस दिन नया रिकॉर्ड बनाते हैं। भीष्म हर रोज रिकॉर्ड बना रहे थे लोगों को मारने का। उन्होंने वैसे ही युद्ध के पहले घोषणा की थी कि मैं हर रोज 10,000 सैनिकों को मारूंगा, हर रोज, ये उनका नियम था। उसके बिना वो प्रसाद नहीं लेते थे, जब तक 10,000 लोगों को नहीं मार देते थे। लेकिन इस बार नया रिकॉर्ड आज बनाया उन्होंने। उन्होंने 5,000 रथ तोड़ डाले अपने तीरों से, 5,000 रथ तोड़ दिए, 14,000 सैनिकों को मार दिया अपने तीरों से, और कई हजार हाथी मारे, और जितने राजा थे हजारों की संख्या में कई राजाओं को मारा उन्होंने। तो ये उस दिन का उनका रिकॉर्ड हुआ। तो सब घबरा गए। तो उस समय शिखंडी को अर्जुन के रथ पर बिठाकर शिखंडी जा रहे हैं, दुशासन ने रोकने का प्रयास किया, अर्जुन ने तीर चलाए, दुशासन हट गए। अब शिखंडी और भीष्म सामने हैं एकदम। तो उस समय भीष्म देव ने युद्ध करना बंद किया, तो तीर चले, अर्जुन ने तीर चलाया और उनके धनुष बाण को काट दिया भीष्म के। पहली बार ऐसा हुआ। तो भीष्म जान गए कि अब मेरा अंत आ गया है, और उन्होंने सोचा कि अगर कृष्ण इन लोगों की तरफ नहीं होते तो मैं अकेला ही सारी पांडव सेना को समाप्त कर सकता था, कृष्ण के कारण बच गए हैं ये लोग, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज भीष्म समझाते हैं कि हमें, अगर हम किसी स्थिति को बदल नहीं सकते हैं तो हमें उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। भीष्म ने स्वीकार किया, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कृष्ण है वहां पर, मैं उनको मार नहीं सकता। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज, चीजों को स्वीकार कर लीजिए अगर आप बदल नहीं सकते हैं, और अगर आप बदल सकते हैं चीजों को, जो चीजें आप बदल सकते हैं, तो उनको बदलने की बुद्धि प्राप्त कीजिए। रोइए नहीं चीजों पर, स्थितियों पर। जैसे आज की स्थिति, हम रोए नहीं कि हाय हाय कोरोना कोरोना, नहीं, हमें रोना नहीं है, नो रोना। क्या करना है, अगर स्थिति बदल सकते हैं तो उसकी बुद्धि प्राप्त करें। कैसे बदल सकते, नहीं है तो ठीक है, स्वीकार कर ले, भगवान की इच्छा। तो भीष्म देव ने स्वीकार किया। उस समय आकाश से साधुओं ने, वसुओं ने, भीष्म भी एक वसु हैं, तो वसुओं ने उन्हें कहा कि भीष्म बहुत हो गया, अब छोड़ दो, अपने जो हथियार हैं डाल दो, अब समय आ गया। तो वर्णन है, उस समय सुगंधित हवा चलने लगी। ये समय था जब अब भीष्म गिरने वाले हैं बाणों की शैया पर, सुगंधित हवा चलने लगी और बहुत वातावरण बहुत अच्छा हो गया। और वो समझ गए भीष्म कि ये सारी कृष्ण की व्यवस्था है। फिर भी उन्होंने प्रयास किया, एक क्षत्रिय है तो अपना धनुष दूसरा उठाया, वो भी अर्जुन ने काट दिया। उन्होंने एक ढाल उठाई, अर्जुन ने तोड़ दी। उन्होंने तलवार उठाई, अर्जुन ने वो भी काट दी। फिर नीचे उतर आए युद्ध करने के लिए। और उस समय जब अर्जुन ने देखा तो उनको तीर लगा, अर्जुन का तीर, पहला तीर उनकी छाती में घुसा। तो उन्होंने देखा उस तीर को, तो उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य थे उस तरफ, तो द्रोणाचार्य से कहा कि देखो ये जो तीर है तुम्हारे शिष्य अर्जुन का है, क्योंकि शिखंडी का तीर मेरी छाती में प्रवेश ही नहीं कर सकता, मतलब इतनी शक्ति ही नहीं है शिखंडी में कि वो तीर चला दे ऐसा। तो अर्जुन एक एक तीर मार रहा था, बड़ी सुंदर बात हम लोग देखते हैं, अर्जुन एक एक तीर मार रहा था, हर तीर जैसे ही उनके शरीर में घुसता था उनके मुख से भगवान का नाम निकलता था। हर तीर पर वो कह रहे थे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हर तीर पर। इसे कहते हैं भक्त, और इसे कहते हैं जीवन, इसे कहते हैं मृत्यु। उनका जीवन था कृष्ण को समर्पित, और उनकी मृत्यु भी हुई कृष्ण को समर्पित। जीवन में एक बात ध्यान रखिए कि अगर जीवन में कृष्ण नहीं है, ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं, और अगर मृत्यु के समय कृष्ण नहीं है, तो ऐसी मृत्यु का भी कोई लाभ नहीं। दोनों चीजें थी भीष्म के जीवन में, मृत्यु के समय भी कृष्ण थे और जीवन में भी कृष्ण थे। तो भीष्म उस समय गिर पड़े, ऐसा लग रहा था कि मानो एक बहुत बड़ा पर्वत सो रहा, स्लीपिंग माउंटेन वर्णन किया गया है। और उस समय भीष्म बड़े शांत हो गए, क्योंकि वर्णन है कि आज उन्होंने सारा ऋण चुका दिया। अर्जुन के नमक, अर्जुन का जो ऋण था, अर्जुन के प्रति उनको जो कर्तव्य थे, जो लोग कहते थे उन्होंने किया नहीं, आज वो चुका दिया। दुर्योधन के नमक का ऋण चुका दिया, क्योंकि युद्ध के पहले जब युधिष्ठिर गए थे भीष्म के पास तो उन्होंने कहा था कि मैं इनकी तरफ से युद्ध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने पैसा लिया है दुर्योधन से, अर्थात उसका नमक खाया है और उसके अधीन हूं। लेकिन आज अब भीष्म ने वो सारा ऋण चुका दिया और वो अपना जीवन पूरा याद करने लगे, अपने पिता को स्मरण किया। और उस समय वर्णन है कि सारे जो साधु थे वो सब आकाश में आ गए भीष्म का गुणगान करने के लिए। और भीष्म ने वर्णन किया कि ये अभी समय नहीं है, मैं 58 दिन तक इंतजार करूंगा और फिर मैं अपना देह त्यागूंगा। तो करीब 58, प्राय 2 महीने बाणों की शैया पर रहे। तो भीष्म ऐसे गिरे और जब वो गिरे तो बहुत अच्छा वर्णन है कि संजय ने जब बताया धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र को आश्चर्य हुआ, ऐसा अधर्म, देखिए कौन बात कर रहा है अधर्म की, वो कहते ऐसा अधर्म हो गया, शिखंडी को बीच सामने रखकर अर्जुन ने ये अधर्म कर दिया, क्योंकि उनके सबसे बड़ी आशा गिर गई थी। उनके पितामह नहीं गिरे थे, उनके कोई सेनापति नहीं गिरे थे, धृतराष्ट्र की विजय की सबसे बड़ी आशा गिर रही थी। तो उन्होंने कहा कि पांडवों को दोष देना चाहिए अधर्म का। संजय ने कहा महाराज दोष आपको देना चाहिए, ये सब आपकी गलती है, आपने अगर युद्ध रुकवा दिया होता तो आज भीष्म गिरते नहीं। तो ऐसा वर्णन हुआ और फिर आगे बहुत विस्तार से वर्णन है। लेकिन भीष्म सिखलाते हैं हमें कि अगर हम अपना पूरा जीवन, और इसका लाभ क्या हुआ, कृष्ण का स्मरण किया तीर लगते समय, बाणों की शैया पर पड़े रहे 58 दिन तक, और वो दिन जब आया जब भीष्म को अपना देह त्यागना था, स्वयं कृष्ण आए उनके सामने, पांडव आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, व्यासदेव, उनके गुरु परशुराम जी आए, भीष्म के गुरु, अपने सारे शिष्यों को लेकर। परशुराम जी के कई शिष्य थे जो भीष्म की निंदा करते थे, कहते थे कि भीष्म ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुरु ने कहा था अंबा से शादी करो लेकिन भीष्म ने मना कर दिया। तो उन सारे शिष्यों को लेकर आए परशुराम जी ये दिखलाने के लिए कि देखो मेरा शिष्य कितना महान है, जब वो प्रवचन करता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े होकर सुन रहे हैं, और केवल ऋषि मुनि ही नहीं, स्वयं कृष्ण खड़े होकर सुन रहे हैं भीष्म देव का प्रवचन जो उन्होंने युधिष्ठिर को दिया। और उसके बाद भीष्म देव चुप हो गए। भीष्म देव की एक पुत्री थी जिसका विवाह उन्होंने कृष्ण से करा दिया। आप सब बड़े आश्चर्य की तरह से देख रहे हैं कि भीष्म देव ब्रह्मचारी, विवाह किया नहीं, पुत्री कैसे हो गई। और उन अपनी प्रार्थनाओं में वो उसको कहते हैं, वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी मति ये आज तक बहुत सी तृष्णाओं में लगी हुई थी, अब आपके चरण कमलों में लगा रहा हूं। तो जो पुत्री उनकी थी वो थी उनकी मति, उनकी बुद्धि, जो बहुत समय राजकार्य में लगी हुई इधर उधर, अब उन्होंने विवाह कृष्ण से करा दिया। तो देखिए हम सबको भी ये एक बहुत बड़ा काम करना चाहिए। एक पिता के लिए बड़ा कार्य होता है अगर वो कन्यादान कर देता है, समाज में माना जाता है। तो हम सबको ये कार्य करना चाहिए, अपनी कन्या जो हमने यहाँ बिठा कर रखी है मति, उसका दान कर दीजिए कृष्ण को, कृष्ण में लगाइए, कृष्ण के चरणों में। और बड़ा सरल मार्ग है कृष्ण के चरणों में या कृष्ण से अपनी पुत्री का विवाह कराने का। क्या विवाह कैसे करा सकते हैं, क्या मार्ग है? भगवान के नाम का उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में कुछ चीजें अवश्य कीजिए। आप में से कई लोग ये कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि वो करें। पहली चीज भगवान के नाम का उच्चारण सतत। भगवान भगवद गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरा कीर्तन होना चाहिए। तो आप ये कीजिए। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि जो भी आप खा रहे हैं उसको भगवान को अर्पण करके खाइए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंगते ते स्वगम त्वगम पाप ये पचंती आत्म कारणात्। अगर हम बिना भगवान को अर्पण किए खा रहे हैं तो केवल पाप है, चाहे वो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो। इसीलिए भगवान को अर्पण कीजिए। और क्या अर्पण कर सकते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तो वो अर्पण कीजिए। तो पहली चीज रोज भगवान के नाम का जप कीजिए। जहां हैं, घर में हैं, व्यापार में हैं, कहीं भी जहां अवसर मिले करिए। जो भी खाइए भगवान को अर्पण करके खाइए। और तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, शास्त्रों का अध्ययन नियमित तौर से कीजिए। रोज भगवान की कथा को सुनिए, भगवान की द्वारा जो दिए गए ग्रंथ हैं भगवद गीता उसको पढ़िए, उनके विषय में जो ग्रंथ है भागवत उसको पढ़िए। और वैष्णवों की सेवा, इसको अपने जीवन का आधार बनाए, सार बनाए। अगर हम इन सब को करते हुए वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पद धूलि से हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है। तो इसलिए अगर हम वैष्णवों की सेवा कर सके, जैसे कहा गया है भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुंत अवशेष तीन महाबल, कि भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्तों के चरणों की धूलि, भक्तों के चरणों को धोया हुआ जल और भक्तों के द्वारा छोड़ा हुआ अवशेष, तीन महाबल हैं भक्ति में। इसका अर्थ क्या है? अब ऐसा मत करिएगा कि आप लोग जाके जहां जो भक्त मिला उसके चरण पकड़े और उसको खींचे इतनी जोर से बेचारा गिर भी जाए, लेकिन कहें कि नहीं हमें तो आपके चरणों की धूल चाहिए, आपका चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारा उद्धार हो जाएगा। वो बेचारे हॉस्पिटल में जाए लेकिन हमारा उद्धार हो जाएगा। भक्त पद धूलि का अर्थ है कि भक्त जैसे जैसे चले हैं वैसे वैसे हम चले उनके पद चिन्हों पर। भक्त पद धूलि अर्थात उनके पद चिन्हों पर चलना। भक्त पद धूलि, पद चिन्हों पर कैसे चले, हमें क्या पता भक्त कैसे चले हैं? इतिहास है, शास्त्र है, परंपरा है। तो परंपरा के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को बिताएं। ये भक्त पद धूलि है। और भक्त पद जल अर्थात भक्तों की सेवा, जब पांव धोए जाते हैं वो एक सेवा है, तो भक्तों की सेवा को महत्व दें। आप जो भी कार्य भक्तों के लिए कर सकते हैं, जो सेवा कर सकते हैं करिए। भक्तों को, एक भक्त को बुलाकर भोजन करा सकते हैं, वो बहुत बड़ी सेवा है। कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। तो भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुंग अवशेष, मतलब भक्तों के मुख से जो निकला, जो वाक्य, जो वचन, जो निर्देश, उसको अपना जीवन बनाए, इसे कहते हैं भक्त भुंग अवशेष। तो भक्तों के मुख से निकला हुआ वाक्य हमारे लिए आदेश हो। इस प्रकार अगर हम जीवन जिएंगे तो निश्चित है कि हम आज जिस तरह की स्थिति में हैं उस तरह की स्थिति से भी जूझने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और हम एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ेंगे जहां कभी भी दुख नहीं है। हमने बचपन में एक गाना सुना था, आचल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले। ये झूठ है, इस जगत में हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई स्थान इस जगत का नहीं है जहां दुख ना हो, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो। अभी देखिए क्या है, सब तरफ केवल गम और आंसू हैं। भगवान ने कहा दुखालयम शाश्वतम और हम कहते हैं जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो। लेकिन हाँ, शायद लिखने वाला भगवान का भक्त रहा होगा या उसने श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े होंगे, तो इसीलिए वो जानता होगा कि भगवान ने कहा है परस तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। इस जगत के परे एक ऐसा जगत है जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले, और वो है भगवान का धाम। वहां जाने की हमें कामना करनी चाहिए। ये जो गाना बनाया जिसने भी, अर्थात ये हमारे सबके हृदय की एक इच्छा को प्रकट किया कि हर कोई चाहता है कि जीवन में गम ना आए, आंसू ना हो, हर कोई मुझसे प्यार करे, मैं हर किसी से प्यार कर सकूं। क्यों चाहता है ये? क्योंकि ये आत्मा की आवाज है, और उस आत्मा की आवाज को पहचानिए, उसको नकारिए नहीं। उस आत्मा की आवाज को अपनी कुछ भोग प्रवृत्ति से दबा मत दीजिए, अपनी गलत इच्छाओं से दबा मत दीजिए। उस आत्मा की आवाज को सुनिए और ऐसे स्थान पे जाने का अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, संघर्ष कीजिए कि जहां जाकर हम पूर्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। और वो एक ही स्थान है जहां ऐसा हो सकता है, और वो है भगवान का धाम। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान का वो धाम है जहां किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आनंद से परिपूर्ण है वो धाम। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं उस धाम का, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षः लक्षा वृतेश सुरभीर अभिपालयंत लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान का धाम कैसा है? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प, जो सारा स्थान चिंतामणि से बना हुआ है, कल्प वृक्ष है। आप बस वृक्ष के नीचे बैठिए, जो इच्छा कीजिए। एक बार एक आदमी कल्प वृक्ष ढूंढने के लिए चला गया, उसको कहा वहां है, घूमता गया, अंत तक पहुंचा, बिल्कुल नहीं मिले। सच्चा मुझे नहीं मिलेंगे लगता है, नीचे बैठ गया एक पेड़ के, बहुत थका हुआ था, सोचा इतनी थकान है कहीं पानी मिल जाता। एकदम पानी आ गया उसके सामने, अरे बहुत अच्छा, पानी पी लिया। फिर कहा थोड़ी भूख भी लगी है, खाना आ गया, खाना भी खा लिया। फिर सोचा नींद आ रही है, अगर अच्छा से कोई बिस्तर होता तो आराम से सो जाता, अचानक बिस्तर आ गया, वो सो गया। और सोते समय बस उसने सोचा कि मैं सो रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक शेर आ जाए और मुझे खा जाए। शेर भी आ गया, क्योंकि वो भूल गया था कि बैठा कल्प वृक्ष के नीचे है। इसी तरह ये जान लीजिए, वैष्णवों को हम लोग कल्प वृक्ष मानते हैं। रोज कहते हैं हम लोग वैष्णवों को जब प्रणाम करते हैं कि वैष्णव कल्प वृक्ष के समान है, सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, दया के सागर हैं। तो कल्प वृक्ष हैं, हम ये जानते नहीं हैं। हम लोग श्रील प्रभुपाद की छत्र छाया में हैं, प्रभुपाद कल्प वृक्ष हैं, जो चाहे दे सकते हैं। लेकिन हम मांगते क्या हैं? शेर आए और मुझे खा जाए, अब फिर वही होता है। इसीलिए जीवन का सच्चा उपयोग है भगवान की भक्ति करना। जीवन का सही उपयोग है इन सारे कष्टों से दूर जाने का प्रयास करना, एक ऐसे स्थान में जहां केवल आनंद ही आनंद है, जहां चलना नृत्य के समान है, बोलना गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी, ये गाना है, बोलना बहुत सुंदर स्थान है वो, वहां जाने का प्रयास हमें करना चाहिए। इस जगत में जहां कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, बारंबार आने वाले हैं, हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन ये कष्ट आएंगे, इनसे परे जाना यही जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको